इन चुनावों में पूर्व यूनियन अधिकारी नेता के साथ उतरने वाली ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी देश की सबसे पुरानी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी 1891 से राज्य चुनावों में और 1901 से फेडरल चुनावों में उतरती रही है। तो आइए आज बात इसी पार्टी की। एएलपी एक तरह से एक व्यापक ट्रेड यूनियनवादियों की रचना है और 120 वर्षों से अधिक समय से इसके गठन के बाद ये अभी भी इसकी औपचारिक संरचनाओं में शामिल यूनियनों के साथ व्यापक श्रम आंदोलन से प्रभावित है। वामपंथी और दक्षिण पंथ की वैचारिक मान्यताओं के आसपास आधारित जो इसमें गुटबंदी की व्यवस्था है वही इसको एक नया आधार देती है। मोनाश यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक निक इकोनोमो कहते हैं कि गुटबंदी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है कि पार्टी किस तरह से काम करती है।
Nothing in the Labor Party happens without the say-so of factional leaders, factional conveners. And that same culture of collective approach to decision making that goes on in the party overall happens at the factional level as well. So factional adherents will get together, they'll decide on a collective approach, and then they're all bound by it. It's very, very disciplined.
मोटे तौर पर कहें तो जो वामपंथी समाजवादी हैं उनके लिए माना जाता है कि वो अधिक समाजवादी प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं और जो दक्षिणपंथी हैं यानी राइट्स हैं वो आर्थिक दृष्टि से अधिक उदारशील होते हैं और वो सामाजिक मुद्दों पर कम केंद्रित होते हैं। पारंपरिक तौर पर लेबर में प्रभुत्व है ब्लू कॉलर वर्कफोर्स का, यानी उनका जो नियम पुस्तकों या हाथ द्वारा काम करने वाले काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पार्टी पर दबाव भी बना हुआ है कि वो अपनी यूनियन आंदोलन वाली छवि को विस्तृत करे। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन वानू कहते हैं कि एक ओर चाहे यूनियन की सदस्यता में गिरावट आई है, वहीं उनका प्रभाव फेडरल सांसदों में बढ़ा है।
I mean, I think in the last parliament there was only a couple that didn't have a union or party staffer background in terms of members of parliament. So the union influence in the party in the caucus is I think getting stronger, ironically or paradoxically, as the influence of unions in the broader economy and broader society is declining.
3 साल पहले पिछले चुनावों में हार के बाद लेबर में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अपने नेता बिल शॉर्टन के चुनाव के लिए पार्टी पद की भागीदारी। न्यू साउथ वेल्स के एंथनी एल्बनीसी के पक्ष में लोकप्रियता यानी पॉपुलर वोट के बावजूद श्री शॉर्टन नेता के चुनाव में जीत सके क्योंकि यहां पर उन्हें अपने सांसद साथियों का समर्थन था। जॉन वानू कहते हैं कि ये 3 साल लेबर नेता के लिए काफी मुश्किल और कठिन वर्ष थे। एक ओर तो पार्टी को हार से उबारना था और दूसरी ओर लिबरल के नेतृत्व में जो उलट पुलट हो रहा था उसके साथ निर्वाह करना था।
When Shorten first took over, he had a really hard job of pulling the Labor Party together. They just lost office. A lot of their members were, disappointed and dispirited. And then he had to face the Liberals coming back with defeating Abbott and bringing Turnbull in. And then a lot of euphoria around Turnbull. But in the last
जब बिल शॉर्टन ने पार्टी की बागडोर संभाली तो उनके सामने थी जैसे बुरी तरह से घायल पार्टी जो सिलसिलेवार नेतृत्व की कसौटियों को झेल रही थी। लेबर के उस समय नेता केविन रट जूलिया गिलार्ड को हटाकर वापस प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। इससे पहले जूलिया गिलार्ड ने 3 साल पहले उनका पद ले लिया था। इस आंतरिक लड़ाई का असर पड़ा था चुनावों पर और कोलिशन ने एक अच्छी जीत पाई। लेकिन फिर टोनी एबट की घटती लोकप्रियता, मैल्कम टर्नबुल द्वारा उम्मीदों पर खरे न उतर पाने की बात और साथ में विपक्ष द्वारा पॉलिसी एजेंडा को निर्भीकता से बताना, इन सब ने पार्टी को नई उम्मीद दी है। श्रीवानु कहते हैं कि श्री शॉर्टन को इस समय कोई नुकसान से अधिक कुछ फायदा ही हुआ है।
there was a fear at one stage that a whole swathe would be swept out in Western Sydney and the Labor Party would be left without a great deal of leadership talent. That didn't happen, and Shorten has had the ability to work with a fairly competent shadow ministry, many of whom have been senior ministers in the former government. So he's had that going for him.
यद्यपि चुनावों में जीत एक कठिन काम होगा जहां लेबर को एक समरूप से 4% का पूरा झुकाव अपनी तरफ चाहिए होगा और 19 सीट्स और चाहिए होंगी वापस सत्ता में आने के लिए. निक इकोनोमो को लगता है कि बिल शॉर्टन की टीम शायद पीछे रह जाएगी.
So I rather suspect that what's going to happen at the election is that Labor is going to get a swing towards it. It's going to pick up seats, but it's not going to pick up enough seats to be able to form a government. Labor tends to be very, very strong in Victoria, but there are very few marginal seats in Victoria. The battle is in Queensland and it's in New South Wales, and the evidence so far is that Labor is struggling to make up ground there.
अगर लेबर जीतती है तो फेडरल सरकार को साथ मिलेगा वर्तमान में विक्टोरिया, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में लेबर की राज्य सरकारों का.